ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संवैधानिक परिषद की बैठक ने सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश पद के लिए की डॉ मनोज कुमार शर्मा की सिफारिश। पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व अर्थमंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहित 14 लोगों के विरूद्ध 3,62,00,00,000 रूपये से अधिक के दावे के साथ केस हुआ दायर। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। तथ्यगत समाचार संप्रेषण पत्रकार का दायित्व है, राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल का कथन। और ईरान युद्ध अब जल्द ही समाप्त होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कथन। अब समाचार विस्तार से। संवैधानिक परिषद की बैठक ने सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश पद के लिए डॉ मनोज कुमार शर्मा की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज प्रधानमंत्री एवं संवैधानिक परिषद के अध्यक्ष वरेंद्र शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक ने सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश डॉ शर्मा की प्रधान न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश की। बैठक में सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविता गौतम, प्रतिनिधि सभा में विपक्षी दल के नेता भीष्मराज आंगे दुम्बे और उपसभामुख रूवी कुमारी सहभागी थे। परिषद की सिफारिश के बाद डॉ शर्मा के नाम को संसदीय सुनवाई समिति से अनुमोदित कराना कानूनी व्यवस्था के तहत आवश्यक है। यदि संसदीय सुनवाई समिति शर्मा के नाम की पुष्टि करती है तो वे नेपाल के 33वें प्रधान न्यायाधीश बनेंगे। इससे पहले न्याय परिषद ने भावी प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति के लिए 6 न्यायाधीशों के नाम संवैधानिक परिषद को भेजे थे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार करने के आरोप में तत्कालीन अर्थमंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहित 14 लोगों के विरूद्व 3,62,00,00,000 रूपये से अधिक का दावा और वसूलने की मांग करते हुए मामला दर्ज किया है। आयोग के सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारी ने जानकारी दी कि विमानस्थल निर्माण के दौरान मूल समझौते के प्रावधानों के विपरीत ठेकेदार कंपनी को कर छूट देकर आर्थिक अनियमितता करने के आरोप में आज विशेष अदालत में मामला दायर किया गया। आयोग ने तत्कालीन अर्थमंत्री कार्की सहित तत्कालीन अर्थ सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, तत्कालीन पर्यटन सचिव महेश्वर न्योपाने, तत्कालीन सह सचिव सुरेश आचार्य और दुंडू राज खिमरे तथा पूर्व सचिव तत्कालीन सह सचिव केवल भंडारी के विरुद्ध 3,62,05,22,000 रूपये की बीगो यानी हानि राशि की मांग करते हुए मामला दायर किया है। इसी प्रकार नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के तत्कालीन महानिदेशक संजीव गौतम और निवर्तमान महानिदेशक प्रदीप अधिकारी, उपसचिव युवराज पांडे, शाखा अधिकृत उर्मिला भंडारी तथा इंजीनियर योगेश अर्याल के विरुद्ध भी समान राशि की मांग करते हुए मामला दर्ज किया गया है। आयोग ने चीनी कंपनी CAMC, उसके अध्यक्ष, परियोजना प्रबंधक और कंपनी प्रबंधक के विरुद्ध भी मामला दायर किया है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने इस वर्ष के राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार एवं वरिष्ठ पत्रकार सम्मान से विभिन्न व्यक्तित्वों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया है। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आज आयोजित समारोह में राष्ट्रपति पोडेल ने इस वर्ष के वरिष्ठ पत्रकार सम्मान से वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकिशोर झा और नम्रता शर्मा को 2,00,000 रूपये नकद सहित सम्मानित किया। इसी प्रकार राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से पत्रकार उमेश श्रेष्ठ, भोला कुमार पासवान और रूपा गहतराज को 2,00,000 रूपये की राशि सहित पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति पोडेल ने कहा कि नेपाल के हर राजनीतिक परिवर्तन में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस प्रकार के सम्मान नई पीढ़ी के पत्रकारों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता और सत्य तथ्यों पर आधारित समाचार प्रसारण करना पत्रकारों की जिम्मेदारी है, जबकि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का प्रमुख दायित्व है। कार्यक्रम में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ विक्रम तिमिल सिन्हा ने कहा कि सरकार स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में है और स्वतंत्र, निष्पक्ष और मर्यादित पत्रकारिता आज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समृद्धि की प्रेरक शक्ति भी है। इस अवसर पर नेपाल पत्रकार महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक आचार्य ने कहा कि वर्तमान सरकार से सभी को अपेक्षाएं हैं लेकिन सूचना तक पहुंच में कमी आई है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस एवं गोरखा पत्र प्रकाशन के 126वें वर्ष प्रवेश के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में संचार मंत्री डॉ तिमिल सिन्हा ने कहा कि सूचना प्रविधि के तीव्र विकास और डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ संचार माध्यमों को नागरिकों की आवाज और सामाजिक हित को केंद्र में रखकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय के साथ पत्रकारिता की शैली, तकनीक और कार्यप्रणाली में व्यापक परिवर्तन आया है, इसलिए गोरखा पत्र संस्थान की पुनः संरचना अपरिहार्य हो गई है। मौके पर मंत्री तिमल सिन्हा ने गोरखा पत्र द्वारा आज से प्रकाशित संथाल और हायु भाषा के समाचार पृष्ठ की प्रतिकृति का भी अनावरण किया। प्रतिनिधि सभा की अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यटन समिति की बैठक में सदस्यों ने लिपू लेख के संबंध में भारत और चीन सरकार को नेपाल सरकार की ओर से हाल ही में भेजे गए कूटनीतिक नोट को सकारात्मक कदम बताया है। समिति की आज हुई बैठक में सदस्यों ने कहा कि भारत और चीन दोनों पड़ोसी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखते हुए अतिक्रमित नेपाली भूमि वापस लाने के लिए प्रभावी कूटनीतिक पहल आवश्यक है। सदस्यों ने नेपाल की भूमि वापस लाने के लिए उच्च स्तरीय संयंत्र गठन कर प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास करने के साथ ही व्यापार, पारवहन और सीमा प्रबंधन को व्यवस्थित करने पर जोर दिया। बैठक में समिति की सभापति सुमनिमा उदास ने समिति के कार्यक्षेत्र और आगामी कार्यदिशा के बारे में जानकारी दी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री रामजी यादव ने कहा है कि वैदेशिक रोजगार से होने वाली ठगी को नियंत्रित करने के लिए डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रतिनिधि सभा की उद्योग तथा वाणिज्य और श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति की आज की बैठक में मंत्री यादव ने बताया कि मंत्री बनने के बाद 25 दिनों के भीतर वैदेशिक रोजगार विभाग में दर्ज 40,000 मामलों में से 13,000 मामलों को डिजिटाइज करने की तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह तक सभी स्थानीय तहों में श्रम स्वीकृति देने की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। मंत्री यादव ने बताया कि वैदेशिक रोजगार से जुड़े मामलों में हेलो सरकार और व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर मंत्रालय ने 25 दिनों के भीतर 178 लोगों का उद्धार किया है। बैठक में समिति के सभापति रहबर अंसारी ने कहा कि वैदेशिक रोजगार से जुड़ी समस्याओं को तुरंत समाप्त करना संभव नहीं है, इसलिए इसके सुधार के लिए कानूनी सुधार पर जोर देना आवश्यक है। बैठक में सांसदों ने वैदेशिक रोजगार को व्यवस्थित बनाने, देश में ही श्रमिकों के लिए सम्मानजनक रोजगार का वातावरण तैयार करने और श्रमिक व उद्यमियों के बीच संतुलन कायम करने हेतु नीतिगत योजनाएं लाने के सुझाव दिए। वैदेशिक रोजगार के नाम पर आकर्षक वेतन का लालच देकर विभिन्न देशों में भेजने का झांसा देकर बड़ी रकम ठगने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुनसरी के 32 वर्षीय राजकुमार तामांग पर जापान भेजने के नाम पर एक व्यक्ति से 11,55,000 रूपये ठगने का आरोप है। दांग के 31 वर्षीय प्रकाश केसी पर अमेरिका भेजने के नाम पर 12 लोगों से 93,00,000 रूपये ठगने का आरोप है। काबरे के 33 वर्षीय दिल्लीमान तामांग की 2 लोगों से 14,75,000 रूपये ठगने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। इसी प्रकार पांचथर के 47 वर्षीय श्रीहांग को दक्षिण कोरिया भेजने के नाम पर एक व्यक्ति से 12,25,000 रूपये और स्यांगजा के 28 वर्षीय नमूना भंडारी को मकाओ भेजने के नाम पर 3 पीड़ितों से 5.5 लाख रूपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। परराष्ट्र मंत्री शशिर खनाल से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवार ने आज उनके कार्यकक्ष में शिष्टाचार भेंट की। मौके पर दोनों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने के विषय पर चर्चा हुई, ऐसा परराष्ट्र मंत्रालय ने बताया। इसी प्रकार परराष्ट्र मंत्री खनाल से दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ के क्षेत्रीय निदेशक संजय विजयशेखरन ने भी शिष्टाचार भेंटवार्ता की। मंत्रालय में हुई मुलाकात में बाल कल्याण, स्वास्थ्य शिक्षा, पेयजल, साफ सफाई एवं नेपाल और यूनिसेफ के बीच जारी सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। धादिंग के चारंगे फेदी को केंद्र बिंदु बनाकर आज सुबह 11:14 पर 4.1 तीव्रता का भूकंप आया, ऐसा खान तथा भूगर्भ विभाग ने जानकारी दी है। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर लोक विजय अधिकारी ने बताया कि भूकंप के झटके धादिंग सहित आसपास के जिलों में भी महसूस किए गए। भूकंप से किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध जल्द ही समाप्त होगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के हवाले से AIR ने बताया कि एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 14 बिंदुओं वाला यह मसौदा 30 दिनों की बातचीत का रास्ता खोल सकता है, ताकि एक व्यापक समझौते तक पहुंचा जा सके। ईरान ने कहा है कि वो इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को नियंत्रण में बताया, लेकिन चेतावनी भी दी कि बातचीत असफल होने पर सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। इधर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच इसराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर को निशाना बनाकर हमले की पुष्टि की है। युद्ध विराम के बाद लेबनान की राजधानी में यह पहला बड़ा हमला माना जा रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संवैधानिक परिषद की बैठक ने सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश पद के लिए की डॉ मनोज कुमार शर्मा की सिफारिश। पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व अर्थमंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहित 14 लोगों के विरुद्ध 3.62 अरब रूपये से अधिक के दावे के साथ केस हुआ दायर। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। तथ्यगत समाचार संप्रेषण पत्रकार का दायित्व है, राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टल का कथन। और ईरान युद्ध अब जल्द ही समाप्त होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कथन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।